नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत की अर्थव्यवस्था में आए उछाल से रेटिंग बेहतर हुई है। इससे आगे भी देश के आर्थिक हालात अच्छे रहने की उम्मीद बढ़ गई है। फिच रेटिंग्स ने देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार का संकेत दिया है। मध्यम अवधि के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को 0.7% बढ़ाकर 6.2% कर दिया गया है। इसके ठीक उलट चीन की रेटिंग्स कम हो गई हैं, उसके ग्रोथ अनुमान में कमी आई है। भारत के बारे में फिच रेटिंग्स ने रोजगार दर में सुधार और कार्य आयु जनसंख्या पूर्वानुमान में मामूली वृद्धि को देखते हुए मध्यम अवधि की विकास दर को बेहतर बताया है और इस दर को 0.7% अंक बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। फिच के अनुसार भागीदारी दर में अपेक्षित नकारात्मक वृद्धि को देखते हुए भारत की अनुमानित श्रम आपूर्ति वृद्धि भी 2019 की तुलना में कम है। कभी वॉल स्ट्रीट की बड़ी कंपनियों में शुमार रही वैश्विक कोवर्किंग कंपनी वीवर्क ने अमेरिका में दिवाला संरक्षण के लिए आवेदन किया है। कोवर्किंग से आशय एक ही स्थान पर कई कंपनियों के लिए कार्यालय से है। वीवर्क दुनिया की प्रमुख कोवर्किंग कंपनियों में आती है। वीवर्क ने दिवाला संरक्षण के चैप्टर 11 के तहत यह आवेदन किया है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने तथा बही खाते को दुरुस्त करने के लिए व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू की है। न्यूयॉर्क एक्सचेंज में सूचीबद्ध वीवर्क ने कहा है कि अमेरिका और कनाडा के बाहर स्थित उसके केंद्र इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। सॉफ्ट बैंक समर्थित वीवर्क इंक का बाजार मूल्यांकन कभी $47 अरब था। चालू साल की पहली छमाही में कंपनी को $69.6 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सोमवार को इसके तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इस योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान में 6 से 10 नवम्बर 2023 तक ये प्रशिक्षण होगा। इस 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों के 41 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने सोमवार को राज्य में बायोमास ईंधन वाली बिजली घर परियोजनाओं को व्यावहारिक बनाने को लेकर वित्त पोषण उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे बिजली संयंत्रों को प्रोत्साहित करने और किसानों के पराली जलाने की गतिविधियों को रोकने में मदद के लिए केंद्र सरकार से इन परियोजनाओं को वित्त पोषण की जरूरत है। यहां बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने आए हरभजन सिंह ने कहा कि नवीकरणीय खरीद दायित्व अनुपालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की लागत के साथ पारंपरिक बिजली की कुल लागत बायोमास बिजली संयंत्रों की शुल्क दरों से काफी कम है। ये लगभग 8 रुपये प्रति किलोवाट बैठता है। उन्होंने कहा कि वितरण कंपनियों के लिए बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों से बिजली खरीद को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्त पोषण जरूरी है। अनुपालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की लागत के साथ पारंपरिक बिजली की कुल लागत बायोमास बिजली संयंत्रों की शुल्क दरों से काफी कम है। ये लगभग 8 रुपये प्रति किलोवाट बैठता है। उन्होंने कहा कि वितरण कंपनियों के लिए बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों से बिजली खरीद को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्त पोषण जरूरी है। बिजली मंत्री ने पंजाब के निजी तापीय बिजली घरों के पछवाड़ा कोयला खदान से कोयले का उपयोग करने की अनुमति भी मांगी। एक आधिकारिक बयान में उनके हवाले से कहा गया है कि ये अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि पछवाड़ा कोयला खदान से प्राप्त होने वाले कोयले की पूरी लागत राज्य के उपभोक्ता वहन कर रहे हैं। इंडिगो ने चालू वित्त वर्ष सन 2023-24 में बाली और मदीना के लिए उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने सोमवार को ये बात कही। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि एयरलाइन चालू वित्त वर्ष में 10 करोड़ यात्रियों को सफर कराने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सही तरह से आगे बढ़ रही है। सितंबर तिमाही में कंपनी ने 2.6 करोड़ यात्रियों को सेवाएं दी और उसे 182 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। एशियाई बाजारों के कमजोर रुख तथा विदेशी कोषों की सतत निकासी के बीच मंगलवार को स्थानीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। बीएससी का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 216.73 अंक टूटकर 64,741.96 अंक पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 63.05 अंक के नुकसान से 19,348.70 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स और एलएनटी में गिरावट थी। एयरलाइन कंपनी विस्तार ने सोमवार को कहा कि उसने अपने बोइंग 787 और एयरबस A321 नियो उड़ानों में वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू की है। कंपनी ने बताया कि ये सुविधा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर उसके लॉयल्टी कार्यक्रम और क्लब विस्तार सदस्यों के लिए होगी। कंपनी ने बयान में कहा कि इसके साथ ही विस्तार ऐसी सुविधा देने वाली पहली घरेलू एयरलाइन बन गई है। एयरलाइन ने कहा कि ये सुविधा क्लब विस्तार के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है। क्लब विस्तार में शामिल होने के लिए किसी शुल्क की जरूरत नहीं है। विस्तार के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी दीपक राजावत ने कहा, इंटरनेट से जुड़े रहना आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। हम चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अपने लॉयल्टी कार्यक्रम और क्लब विस्तार सदस्यों को वाईफाई की पेशकश करके प्रसन्न हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।